जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
मेरा सवाल हजरत सुलेमान के जमाने में
जी
जो
जी
राइश हुआ
जी जी
उसका तकरीबी पहलू क्या था और फिर इस बात से क्या मुराद है कि तमाम इल जो सहीफों पर था, खानों पर था, लकड़ियों पर था, वो जमीन में दफन करा दिया गया और इस पर अपना तख्त रख दिया गया। सर इसके बारे में
ये असल में हजरत सुलेमान के दौर से पहले का एक वाक्या है जिसका जिक्र कुरान हकीम में आता है। कुरान हकीम ये बताता है कि दो फरिश्ते भेजे गए हारूत और मारूत नाम के, उन्होंने लोगों को एक ऐसा इल्म सिखाया जो कि मुस्बत तर्जों में इस्तेमाल होना चाहिए था लेकिन लोगों ने उसको मनफी तर्जों में इस्तेमाल किया और मियां बीवी के दरमियान नफाक और मफारकत पैदा की, यानी उस इल्म को जादू के तौर पे इस्तेमाल किया और मियां बीवी के दरमियान अलैदगियां करवाना शुरू कर दी। अब उस इल्म को क्योंकि वो हारूत और मारूत जो थे वो बता देते थे कि भई आप इस इल्म को बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, ये पॉजिटिव भी है लेकिन अगर आपने इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया तो ये मुआशरे के लिए बुरा होगा। अब रिवायात ये हैं कि उनकी इस हरकत की वजह से वो पकड़ में आ गए और उन्हें बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, ये रिवायात में
ठीक
है। अब हुआ ये कि चूंकि लोगों ने उनसे जो इल्म सीखा वो जादू कहलाता था, दूसरे के हवास को काबू करके उसको अपनी मर्जी का इस्तेमाल करते थे, इसको जादू कहते हैं। जादू में क्या होता है, दूसरे के हवास का असरअंदाज हुआ जाता है। अब यही काम अगर रूहानी तसर्रुफ से किया जाए तो ये करामत कहलाती है। अब इसमें फर्क ये है कि जादू जो है ये तखरीब के लिए इस्तेमाल होता है, जाती मफाद के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि तामीर जो है वो रूहानियत या करामत जो है वो तामीरी होती है और वो बंदे की अपनी किसी जाती गर्ज के लिए नहीं होती, वो दूसरे के भले के लिए होती है। और करें जितनी करामात हम अंबिया कराम की सॉरी अंबिया कराम के तो मौजजात होते हैं और अंबिया कराम से मंसूब जितनी भी करामात हम पढ़ते हैं उसमें उनका अपना कोई फायदा नहीं होता, उनकी अपनी कोई गरज नहीं होती, वो दूसरे को सबक देने के लिए या दूसरे का भला करने के लिए करामत कर गुजरते। और करें अब वो जो इल्म उन्होंने सिखाया था ये हजरत सुलेमान के दौर से पहले का किस्सा है। जब हजरत सुलेमान बरसर इक्तदार आए तो आपने ये कुरान में पढ़ा है कि वो बहुत ही मुंतजिम किस्म के इंसान थे, बहुत ही शानदार इंतजाम था, मुंतजिम वो बहुत आला थे। देखे ना जिसके लश्कर में जानवर और जिन्नात तक मौजूद हो और गड़बड़ कोई ना कर सके, हैं? हुदहुद जरा सा गैर हाजिर हो तो वो कहें कि भी मैं उसको ज़िबा कर दूंगा। अंदाजा करें उनका रोब और दबदबे का क्या आलम था। जब उन्होंने देखा कि लोगों ने एक गलत चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो उन्होंने वो सारी चीजें इकट्ठी करवाई, किस किस के पास है, कौन कौन करता है, सारों को पकड़ के लाइन हाजिर कर दिया ठीक हो गया। और उनसे वो जो भी वो नुस्खे थे या जो भी वो जादू के अल्फाज थे या जो भी ताबीजात थे या जो भी नकूश थे वो सारा कुछ कब्जा करके उन्होंने अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया या एक जगह दफन करके उस पे तख्त रख दिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई अब ये बनी हुई बातें ज्यादा हैं, ठीक है कि भाई चूंकि उनके पास वो जिन्नात थे और वो जिन्नात उसकी हिफाजत करते हैं और वगैरह वगैरह इस तरह की मिथोलॉजिकल और फैंसीफुल बातें करके इसको जरा सजाया बनाया गया, दास्तान बना दी गई। हजूर मुर्शिदे करीम ने जो तज़किरा किया है, जिसका आपने हवाला दिया है, वो ये है कि भाई हर इल्म इल्म है। क्या है? हर इल्म महज इल्म है, असल चीज उसके इस्तेमाल की है कि आप उसे मुस्बत तर्जों में इस्तेमाल करते हैं, तामीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उसे मनफी तर्जों में और तखरीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखे ना हजूर मुर्शिदे करीम ने दो मिसालें दी, एक कि भी आग जो है वो जलाती है, अब उसे जलने के अमल को ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा, क्योंकि उसी आग से खाना भी पकता है और उसी आग से किसी को जलाया भी जाता है। इसी तरह दूसरी मिसाल उन्होंने निश्चर की दी, यानी वो चाकू जिससे डॉक्टर सर्जरी करते है, तो वो भी चाकू, ठीक है, आप उसका जरा बड़ा कर ले तो उसी को खंजर कहेंगे, उसी को और बड़ा कर दे तलवार कहेंगे, है? उसकी जरा भद्दी सी शक्ल बना दे तो उसे टोका कहेंगे, है तो वो धार ना। अब उस धार का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हैं? मतलब आप चारा कुतरने के लिए टोका इस्तेमाल करते हैं, मतलब दुश्मन से लड़ने के लिए आप तलवार का इस्तेमाल करते हैं, मसलन आप मिस्टर से चाकू से सब्जी काटने का काम लेते हैं, सर्जन जो है वो उसी चाकू से मरीज का ऑपरेशन करके उसका जो फालतू होता है या गलत चीज होती है उसको काट के ठीक कर देता है। अब वही चाकू वही मिस्टर किसी मेरे जैसे जाहिल के हाथ में दे दे, अगले के पेट में भोंक दे, क्या हुआ? पेट कट जाएगा। अब वो पीछे नफरत और हकारत भी हो तो वो कत्ल करने का जज्बा कहलाएगा, ठीक हो गया ना? तो वो इल्म जो हारूत और मारूत ने सिखाया था उसके भी दो पहलू थे। अब इल्म तो इल्म है, सीखना तो सारा इल्म चाहिए, लेकिन ये कि हमें ये शऊर होना चाहिए कि हर इल्म का पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाज़ लोग तंजिया गुफ्तगू करते हैं। अब तंज करना एक हुनर है, एक हर आदमी नहीं कर सकता। अब एक बंदा तंज करता है दूसरे की दिल आजारी के लिए, ऐसा तंज करता है कि अगले के तन बदन में आग लग जाए और अगला उसके मारने दौड़ पड़े, ठीक है। दूसरा ये कि वो तंज इसलिए करे कि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए और आप उसको करेक्ट कर लें। तो ये इल्म का इस्तेमाल हुआ, ये एक सलाहियत है उसके अंदर। अब वो उसका नेगेटिव इस्तेमाल करता है तो मार खाता है, पॉजिटिव इस्तेमाल करता है तो इज्जत कमाता है, ठीक हो गया ना? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सो वेरी मच ऑनर्ड जी, थैंक यू जी। और कोई सवाल? जी वालेकुम
अस्सलाम। सर मेरा सवाल है, आप रब वही जो है आप उसको प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने जो रसूलुल्लाह पर जब कुरान नाज़िल किया तो वो हज़रत इब्राहिम के थ्रू क्यों वही हुआ, हज़रत इब्राहिम को क्यों चूज किया गया?
माशाल्लाह जी, बहुत ही कीमती सवाल आपके ज़हन में अल्लाह ने डाला। पहले तो ये समझें कि फरिश्ते क्या होते हैं, और ये जो जिब्राइल है ये किस किस्म का फरिश्ता है। फरिश्तों की जिस किस्म या जिस ग्रोह से वो ताल्लुक रखते हैं उसको मलाए आला कहते हैं। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने किताब लौह कलम में इसकी बड़ी वजाहत की है कि ये जो मलाए आला हैं वो छह फिरासतों के हामिल होते हैं। क्या ये जो उनके छह पर हमें बताए जाते हैं ना कि जी मैंने फरिश्ता देखा तो उसके दो पर थे, या मैंने देखा चार पर थे तो मैंने देखा छह पर थे। अब ये जो परों की तादाद है ये असल में उनकी फिरासतों को का मेटाफर है। इससे मेटाफर, अब फरिश्ता क्या है? नूर की मखलूक है। नूर कहते हैं ख्याल को, यानी कि अल्लाह के ख्याल की मखलूक है वो। डायरेक्ट मतलब है ख्याल डिस्प्ले होता है, तस्वर बनता है, फिर वो एहसास बनता है, फिर वो मजहर बनता है, ठीक है। एक ये कि डायरेक्ट नूर के दर्जे पे ही उसका डिस्प्ले हो गया। अब नूर के दर्जे पे डिस्प्ले होने का मतलब ख्याल के दर्जे पे वो डिस्प्ले हुआ हुआ। अब बात आ गई कि वही क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसको रोक ले और आगे दूसरी बात सुन ले। वही कहते हैं इंस्पायरेशन को। बाद लोगों ने इसका तर्जमा रिविलेशन किया। अब अल्लाह रब्बे करीम एक बात बराह रास्त किसी के जहन में डाले तो क्या चांस है कि वो बंदा भक्ष्य हो जाएगा? ऐसे ही है जैसे कि 11,000 वोल्ट करंट जो कि डैम से प्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्ट किसी के घर में सप्लाई कर दिया जाए। गौर करें मैं क्या कह दिया। अब 11 KV 11,000 वोल्ट करंट जो है वो डायरेक्ट घरों में सप्लाई नहीं किया जाता। सॉरी, ठीक हो गया? क्यों? बीच में ग्रिड स्टेशन रखे जाते हैं
क्योंकि वो बहुत ज्यादा अप्लाइंस के लिए।
ग्रिड स्टेशन के बाद वो आगे शहर में 440 वोल्ट करके उसको सप्लाई किया जाता है, यानी उसे कट डाउन किया जाता है। उसके बाद जब आपके ये ट्रांसफार्मर तक आता है तो ट्रांसफार्मर 440 को 220 वोल्ट कर देता है। जब आप फोन चार्ज करते हैं तो आप चार्जर लगाते हैं, वो 6 वोल्ट रह जाता है। हाँ या नहीं? अब आपको ये बात, ये मिसाल देकर मैं अर्ज करता हूँ। वही जो है ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह रब्बे करीम बराह रास्त भी नशर करते हैं और अल्लाह रब्बे करीम ने एक इंतजाम बनाया हुआ है ग्रिड स्टेशन का, ठीक है। वो उनके थ्रू अपना करंट जो है या वो जो थॉट का वो जो मैसेज है वो कन्वे किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। अब ये अल्लाह तबारक व ताला के अपने तरीके हैं। कहीं ये इल्हाम के जरिए होता है, यानी कि हल्की सी इंस्पायरेशन आ जाती है। कहीं ये बाकायदा जब हजूर सलाम का जहन यहाँ तक पहुँच गया कि वो फरिश्ते की दुनिया को देख सके, ठीक है। अल्लाह को उन्होंने बराह रास्त नबूवत के 9 साल बाद देखा। गौर करें, 9 नबी में मेराज हुई, हाँ या नहीं? यानी के पहले वो सक्कत दर्जा ब दर्जा बढ़ी ना। देखे जब शादी हुई तो 15-25 साल से लेके 40 साल तक का हमें कोई दस्तयाब नहीं है रिकॉर्ड के, हाउ डिड ही ग्रो। उसके बाद जब वो इन हिज 40th ईयर जब वो गारे हिरा में जाके गौर व फिक्र करते थे तो क्या हुआ कि उनकी साइकिक पावर्स डेवलप होकर स्पिरिचुअल पावर्स बन गई। जब वो स्पिरिचुअल पावर्स बन गई तो ही कुड विटनेस द रियल्म ऑफ एंजल्स, ठीक है। तो अल्लाह रब्बे करीम ने यूजिंग दी वाया मीडिया ऑफ जिब्राइल कन्वेड हिज मैसेज टू हिम, ठीक है। यानी अपना माइंड सेट जो है वो बताया कि आई वांट दिस माइंड सेट ऑफ माय क्रीचर्स स्पेशली द ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह रब्बे करीम ने हजूर सलाम को इसलिए आगाह किया था कि वो बाकी सबको इत्तला दे दे। So was he called Rasool? That he was sent down, Mustafa. He was chosen one, Nabi. He was informing us about the unseen. और करें, ये qualities indicate हो रही है ना उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी स्ट्रेंथ। अब हम अब चूंकि नबूवत का सिलसिला मुनकते हो गया, यानी अब कोई बंदा नबी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने फाइनल कर दिया सारे प्रोसेस को। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप अल्लाह तक ना जाए, उन्होंने ये तो नहीं फरमाया कि भाई ये जो वही आई है तुम इसे इस्तफादा नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, वो जो वही उन पे आई उसको रिकॉर्ड कर दिया और अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए अवेलेबल कर दिया। जब वो मेरे लिए आपके लिए अवेलेबल है तो क्या हमें उसी जौक और शौक और शगब के साथ उसमें इतना घुस नहीं जाना चाहिए कि मुझे महसूस हो कि ये वही की तर्जें मुझ पे मुंतकिल हो रही है। हमने क्या हशर किया, हम लकीर पे उंगली फेर के तो खुश हो रहे हैं कि हमें सवाब मिल रहा है। लकीरों पे कुरान के बाद लोग कहते हैं कि भाई कुरान को अगर नहीं पढ़ना होता तो सिर्फ आप उंगली फेरते जाएं कुरान की लकीरों पे, सतूर पे और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते जाएं तो आपको पूरा कुरान इस तरह से खत्म कर सकते हैं। अब ये कोई बात है भला, अकल मानती है इस बात को? तो वो मैसेज कहाँ गया जो हजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी जाफिशानी से अपनी जान को जोखम में डाल के मुझ तक और आप तक पहुंचाया? बहरहाल बात समझ आ गई आपको कि वही क्या होती है। वही ब्राह रास्त अल्लाह रब करीम की तरफ से एक पैगाम होता है नौ इंसानी के लिए या जिस पे भी की जाए, क्योंकि देखे ना कुरान में है कि हम शहद की मक्खी को वही करते हैं। अब जाहिर है वहां तो जिब्राइल नहीं आते होंगे या आते होंगे। इसी तरह कहा कि जमीन कहेगी माँ ओ हा है? मुझे वही किया गया क्या मतलब हुआ कि भाई अल्लाह की तरफ से इंस्पायरेशन का एक सिस्टम है। मैंने एक मिसाल दे दी आपको कि वो जनरेशन पॉइंट से वो 11,000 केवी डायरेक्ट अगर आप किसी के प्लग में डाल दे तो क्या असर होगा उसका। तो वो अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटीज उसको कट डाउन करके स्लो डाउन करके फीड किया जाता है या इंस्पायर किया जाता है ताकि आपका जहन अकॉर्डिंगली ग्रो करे और फिर आपका जहन रफ्ता रफ्ता इस काबिल हो जाए कि आप ब्राह रॉस 11,000 वोल्ट को बर्दाश्त कर सके। ये मकसद है वही का। देखे ना हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से कबल, अपने विसाल से कबल क्या फरमाया, वहो वा बल रफीकुल आला। क्या क्या मतलब है इस बात का कि उन्होंने अल्लाह की रफाकत मांगी। उन्होंने कहा तू ही तो है जो सबसे आला रफीक है। क्या मतलब हुआ, वो 11,000 वोल्ट डायरेक्ट पी रहे थे। मिसाल समझ आ गई। हम ऐसे नबी की उम्मत हैं, लेकिन हम क्या वाकई उम्मत हैं? हमें शर्म भी नहीं आती, हमारे जहन इतने सुकड़े हुए, हवास इतने सिमटे हुए, दिमागों की जगह बेर की गुठलियां रखी हैं। लोग तो कहते हैं ना अखरोट है इसका दिमाग। मैं कहता नहीं, ये उससे भी कोई छोटी चीज है। मतलब है भी आर माइंड्स आर मोर लाइक अ नट। अंग्रेजी में कहते भी है ही हैज गॉन नट्स। क्या मतलब है, दिमाग बंद हो गया, ऊपर से एक सख्त छिलका चढ़ गया, अंदर के इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उसको ग्रो ही नहीं होने दे रहे। बहरहाल मैं कुछ ज्यादा बोल गया, माफी चाहता हूँ।
थैंक यू सो मच।
आपके इतने प्यारे सवाल ने मुझे चार्ज कर दिया।
थैंक यू जी।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले को सर।
सर मेरा क्वेश्चन है कि जब किसी की डेथ होती है तो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हम मन जब कोई मरता है तो हम ऊपर से चीजें करते हैं, इससे बात करते हैं, तो जब जिस्म में रूह ही नहीं रहती है तो फिर इन कॉन्सेप्ट का आप भी एक्सप्लेन करेंगे।
मैं समझ गया आपकी बात। असल में ये है, पहले तो आप ये मौत के तसव्वुर को आज वाज़े कर लें अपने ज़हन में। मौत का मतलब फना होना नहीं है। मौत को हम इंतकाल कहते हैं। मरने का लफ्ज जो है ना, आप हिंदी का एक लफ्ज देखें अमर, अमर का मतलब है जो क्या हो गया, इमॉर्टल हो गया। देखें आप अंग्रेजी में मॉर्टल और इमॉर्टल को देखें, इम लगा तो आई एम मॉर्टल। जब आपको ये एहसास हो गया कि आई एम मॉर्टल तो आप इमॉर्टल हो गए। गौर करें कैसी अजीब शरारत है ये बात समझाने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए, ठीक है। अब होता ये है कि बंदा यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट कर गया, माइग्रेट कर गया, ठीक है, तो क्या वो बंदा मर गया, मतलब फना हो गया, खत्म हो गया? नहीं,
नहीं।
अब फर्क सिर्फ ये कि हमारा महदूद शऊर उसको चूंकि जिंदा मान रहा है कि भी वो अमरीका में है, भले वो सालों खबर ना ले, कोई फोन ना आए, लेकिन आपके जहन में तसल्ली है कि चलो वो ही इस देर, हाँ या नहीं। इसी तरह जब हम सोते हैं तो हमारा जो इनर सेल्फ है, जो बॉडी के अंदर असल इंसान है, वो आलम राह में मुंतकिल हो जाता है, या उस जोन जिसमें हम सोते वक्त होते हैं उसको हम आलम राह कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब हमें नींद आ जाती है तो शऊर सस्पेंड हो जाता है, तो हम लाशऊर के जोन में चले जाते हैं। लाशऊर का वो जोन जिसमें हम नींद के बाद दाखिल हो जाते हैं, उसको अगर आप टेक्निकली कहें तो ये आलम एराफ है, ठीक है। यानी कि ये कोई दूर नहीं है, इधर आप सोए, अब एक बंदा मर गया। अब मरना क्या है कि जो बंदा हम आलम एराफ में गया वो वापस नहीं आया। और करें क्या बता गया, दरअसल वो बंदा तो वहाँ मौजूद है, सिर्फ जोन बदल गया। अब उस जोन में ही इज ए लिविंग पर्सन, लिविंग इमॉर्टली, न सिर्फ लिविंग बल्कि इमॉर्टल हो गया वो। अब क्या जाना तो हमने भी है, वी ज्वाइन हिम, एक तसल्ली ये होती है कि वी हैव टू ज्वाइन हिम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे ये जो 10-20 साल की यहाँ सजा है ये काट के ऊपर जाना है, तो आप कम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि चले उसकी रिहाई पहले आ गई, मेरी बाद में आ जाएगी। अब दूसरी तरफ ये होता है कि जब हम किसी की फौतीदगी के बाद जो भी कलमात कहते हैं, जो भी रेसिटेशन करते हैं, कोई तिलावत करते हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं, तो हम इसका अजर सवाब उसको पेश करते हैं, ठीक है, या खैरात करते हैं, किसी को मतलब है कपड़े दे देते हैं कि भाई ये मैं अपने भाई के लिए जो फौत हो चुका है उसके इशारे सवाब के लिए किसी गरीब को आपने 2 जोड़े कपड़े दे दिए, किसी को आपने कोई चीज दे दी, खाने को खाना खिला दिया। अब ये कानून ये है कि हमारी वेल विशेस थॉट्स की सूरत में वहाँ पे उसको डेकोर कर देती हैं, उसको संवारती हैं, उसको सजाती हैं। मसलन आपने दुआएं की, मसलन आपने एक जोड़ा कपड़े जो है किसी को दान कर दिए, मेरी अम्मी की तरफ से या मेरे अब्बा की तरफ से, ये मैं उनके लिए काले सवाब के लिए तुम्हें दे रही हूँ, तो आपकी गुड विशेज वहाँ उस बंदे को जाहिर रोशनियों की सूरत में मुंतकिल होगी ना। इसको कहते हैं ईसाले सवाब, इसे कहते हैं अंग्रेजी में कन्वेइंग द रिवॉर्ड। अब जब ये एक हकीकी फिनोमिनन हमने तसव्वुर कर लिया तो हम क्या करते हैं, हम जाने वालों को अच्छे अल्फाज में याद करने की हमें तलकीन की जाती है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जाने के बाद उसके, तो वो उसको हर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बता दूं, इसमें बाज लोग ये देखते हैं, यानी जिनको मुशाहिदा हासिल है कि उनके औलाद ने बड़ी अच्छी तरबियत उन्होंने की, अपनी औलाद की औलाद ने बाद में उनको बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद किया, तो किसी के सर पे ताज पड़ गया, अब अम्मा है उनकी, उस बच्चे बहुत प्यार करते हैं, तो वहाँ पे वो रोशनियों का बना हुआ एक ताज उनके सर पे आ जाएगा। अगर बाप है हो सकता है वो बड़ी सी शानदार सी रोशनियों की बनी पगड़ी उसके सर सज जाए कि भाई तुमने तुरा मारा था कि बच्चों की अच्छी तरबियत की है, वो लिहाजा तुरंबाज बन गए वहाँ पे। ठीक हो गया। हजूर मुर्शिद करीम ने एक वाक्या बताया था एक तकरीर में, 2004 की तकरीर थी उनकी, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं जब आलम एराब की सैर कर रहा था, जो कि हम सभी करते हैं लेकिन हमें उसका शऊर नहीं है, और वो ये बात बताकर हमारे अंदर ये शऊर डेवलप करना चाहते हैं कि हम मरने के बाद की कैफियत से यही इसी जिंदगी में वाकिफ हो जाएं। यही बात हजूर अलैहिस्सलाम का ये कॉल कह रहे हैं, मौत कब ले अंतुम मौत, तुम खुद मरना तो सीखो, यानी मरने के बाद के जोन से दुनिया में इस जिंदगी में वाकिफ हो जाओ। गौर करें हमारा जहन किसने, आर वी अवेयर, आर वी रेडी टू प्रिपेयर आवर सेल्फ टू डाई। किसी को कहो तो वो कहता जी डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। भाई एक हकीकत है, हमने अल्लाह के पास जाना है, हमारे अंदर तलब ही नहीं है अल्लाह के पास जाने की, वी आर स्केर्ड ऑफ अल्लाह, सो दैट मेक्स इट अ बुलशिट स्टोरी। अब क्लियर हो गई बात, जाने वाले जो हैं वो अमर हो गए एक, दूसरी बात वो मुंतकिल हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी ओवर देयर। हजरत मुर्शिद करीम एक दफा मुझे ये जुमला इरशाद फरमाया, कहने लगे भाई अगली दुनिया अच्छों के लिए बहुत अच्छी है, अरे भाई वो बुरों के लिए भी बहुत अच्छी है। फिर उसकी वजह ये फरमाई कि वहाँ तीन चीजें नहीं है, एक मुआश नहीं है, और करें जब रुपया पैसा नहीं है, लेन देन नहीं है, धंधा नहीं है, तो मोहताजी नहीं रही ना किसी की भी। दूसरी चीज वहाँ सवारी नहीं है, सवारी से क्या मुराद है कि आपने फर्ज करे अमरीका जाने, ठीक है, तो आप अपने जहन में तय कर लेते हैं कि मैं एक मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो आपके जहन की स्पीड आपको एक मिनट में अमरीका पहुंचा देगी। मिसाल है इसकी, अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके देख लें, आप अमेरिका में किसी को सोचे देखे एक सेकंड में आपका जेन वहाँ पहुंच गया, और करें इसी तरह तीसरी चीज जो वहाँ नहीं है वो है शरीयत। क्यों? क्योंकि शरीयत जो है ये शौरी निजाम के लिए, शौरी सस्पेंड हो गया, शौर रहा ही नहीं, तो सोने के बाद जो कुछ भी आप करें उस पर शरीयत लागू होती है। इसी तरह मरने के बाद भी आप जो कुछ भी आपका नस्मा कर रहा है वो जो वहाँ मुंतकिल होता है, वो आप मुंतकिल होते हैं लेकिन उसके पास से एक जिस्म होता है जिसका नाम है नस्मा, जिसको हम जहन कहते हैं, समझने के लिए। मेरा ख्याल है कि अब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई आपके जहन में। जी आपका शुक्रिया कि आप इसको इस तरह अच्छी तरह समझी। जी जनाब अली।
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
جی سر میرا سوال باتیں میری مراد کی میں سے ہے 304 صفحے پر فرمایا یہاں سب کچھ ایک روسا ہی ہے. آدمی کہتا ہے میں نہیں ہوں گا تو میری اولاد کو کون پڑھائے گا. لیکن جو ماں باپ اپنے اولاد کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی اولاد جو ڈاکو کیوں بن گئے. اگر بیج کو اصل مان لیں تو درخت فکشن کیا, درخت میں دوبارہ گٹھلی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نہ درخت اصل ہے اور نہ گٹھلی. آپ سوچیے کہ اصل کیا ہے. دعوت فکر دے کر ایک نقطہ مزید یہ بتایا کہ اپنی کے مرنے کے بعد جب اس کا ایمان نامہ سیل کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ ختم اور دو سال تمام وغیرہ کا کیا مطلب؟
جی
میں مہمان پر لگے اللہ کے مہر سے گزر سکتی ہوں. پھر میرا سوال یہ تھا کہ جو اگر عید کو اصل مان لیا جائے تو دونوں سیکشن ہیں.
جی جی اصل میں دیکھے نا بیج کے اندر میں ایک مائکرو فلم چھپی ہوئی ہے. وہ جب آپ بیج کو بوتے ہیں تو وہ مائکرو فلم کھلنا شروع ہوتی ہے اور پودا بننا شروع ہوتا ہے. بیج کے اندر جو اتنی سی گلی ہوتی ہے وہ اس سیٹلنگ کے لیے اس نوزائیدہ پودے کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے. وہ اس خوراک کو استعمال کر کے پہلے اپنی جڑ بناتا ہے. وہ جڑ جو ہے وہ پانی میں جاتی ہے, پانی جذب کرتے پانی کے پیچھے پیچھے مٹی میں سے رنگ چوستی ہے. اوپر سے اسی خوراک سے اس کا چھوٹا سا تنا بنتا ہے, پتا بنتا ہے تاکہ وہ روشنی کے پروسیس سے اپنی خوراک خود بنانے کے قابل ہو جائے. اب یہ سارا پروسیجر نظر میں رکھتے ہوئے آپ غور کریں کہ اصل کیا ہوا. نہ بیج اصل ہے نہ پودا اصل ہے. تو پودے میں دوبارہ بیج بننا بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ مائکرو فلم کی ری پروڈکشن ہے. اور مائکرو فلم کس نے بنائی؟ وہ اللہ نے بنائی. تو اصل کیا ہوا؟ وہ جو اللہ کا خیال ہے. اصل کیا ہے؟ جو اللہ کا نظام ہے. اصل ہم پودا دیکھ رہے ہیں, بیج دیکھ رہے ہیں, بیج میں سے پودا نکلتے دیکھ رہے ہیں, اگ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کی شاخیں آ رہی ہیں, پتے آ رہے ہیں. پتے جو ہیں وہ روشنی کی مدد سے اس میں کاربوہائیڈریٹ بنا رہے ہیں, آکسیجن بنا رہے ہیں تاکہ پودا گرو کرتا رہے کرتا رہے, حتیٰ کہ اس پہ پھول آ جاتے ہیں. پھول آنا کیا ہے؟ پودا خود کو ریپروڈیوس کر رہا ہے. وہ نو جو ہے وہ آگے اپنے فرد کو ملٹیپلائی کر رہی ہے, پروپوگیٹ کر رہی ہے, اضافہ کر رہی ہے, اپنے جیسی ڈپلیکیٹ کاپیاں بنا رہی ہے, فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بنا رہی ہے, اپنی نو بنا رہی ہے. پودا ایک نو کو ریپرزینٹ, یہ نو ہی درجے کی سوچ ہے. نو جو ہے وہ خود کو افراد کی صورت میں دوہرا رہی ہے. تو فکشن ہوا یا نہیں ہوا سب کچھ؟ پودے میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ مائکرو فلم. ٹھیک ہے, پودے میں, بیج میں, بیج کے اندر وہ مائکرو فلم تھی. فوٹو اسٹیٹ کاپیاں دوبارہ پھول کے اندر بیج بن رہی ہیں. غور کریں ہاں یا نہیں؟ اب دوسری بات کیا تھی؟
وہ جو
احسان ثواب کا تو آج ماشاءاللہ اتنی گفتگو ہو گئی, آپ کو سمجھ آ گیا کہ نامہ اعمال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا میری اچھی باتوں کا. یا میں نے آپ کو وضاحت سے بتایا کہ جب ہم کسی کو احسان ثواب کرتے ہیں تو وہ چونکہ بندہ اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو اچھا لگتا ہے, آپ کے تحفے تحائف اس کو بھلے لگتے ہیں. مثال کی بات ہے, آپ قید میں ہیں, جیل میں ہیں, میں آپ کے لیے آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. کہنے کا مطلب یہ کہ میں قید میں ہوں, فرض کرے, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور تحفے لاتے ہیں. کیا ایک بوتل شربت لے آتے ہیں, ایک بوتل مطلب دو پیکٹ سگریٹ کے لے آتے ہیں. اب مجھے بتائیں ایمانداری سے مجھے اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ وہاں جو میں سزا کاٹ رہا ہوں یا اپنا انجوائے کر رہا ہوں محل میں جو بھی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا. वो तो मेरे करतूतों का या मेरे अमाल की जजा है या सजा जो भी है वो तो मैं उसको भुगत रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर आपकी अच्छी बातें उस तक जाएंगी तो ऐसे ही है ना, जैसे मिठाई मिल गई उसको, फूल मिल गए। ये जो कब्र पे हम फूल डालते हैं तो क्यों डालते हैं? है? वो भी चार दिन डालते हैं फिर फूल भर जाते हैं। अगर आप साल बाद भी जाके फूल रखेंगे तो उसको फूल पहुंचेंगे, लेकिन वो फूलों की बराह रात फूल नहीं पहुंचेंगे। फूलों का वो जो जज्बा है ना आपका, वो पहुंचेगा उसको। इसको इसाले सवाब कहते हैं, उसके नामाए अमाल से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। लेकिन अगर उसने बच्चों की तरबियत अच्छी की है, वो बच्चे उसके जाने के बाद उसके लिए दुआगो हैं, तो ये सबका जारिया है। बच्चे नेक अमाल कर रहे हैं बाप की तरबियत की वजह से, तो बाप के खाते में वो इजाफा ऑटोमेटिकली डिविडेंड जाता रहेगा। ठीक हो गया
जी?
तो ये दोनों बातें वाजे हो गई कि असल क्या है। असल चीज अल्लाह का जहन है जो कि डिस्प्ले हो रहा है एक माइक्रोफिल्म की सूरत में, क्योंकि अल्लाह ने एक नौ को सोचा, वो नौ जो है वो माइक्रोफिल्म बन गई, वो हर बीज के अंदर है। जी
सर,
जी
एक और सवाल आ रहा है
जी,
जैसे कुछ बच्चों के वाले कोई भी खास कर वाले चले जाते हैं, यानी उनकी तबीयत का मौका कहूँ वो नहीं होता, तो फिर मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं कुछ अच्छे काम कर रहे तो उसका क्योंकि उन्होंने तो तबीयत नहीं की तो उनका भी उनके पास जाता है।
बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए कि देखिए रिश्ता है, एक रिश्ता है। बच्चा असल में क्या है? अपने अम्मा और अब्बा की रिप्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो अपनी जड़ से अलग नहीं हो सकता। अब पौधा जब उग जाता है तो क्या वो ये भूल जाएगा कि मैं एक बीज में था?
नहीं।
अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात सुनिए, बहुत जरूरी, याद रखिए, कोई बंदा किसी की कोई तरबियत नहीं कर सकता। हर बंदा अपनी तरबियत खुद करता है, हर बंदा अपनी तरबियत खुद करता है। इस जुमले पे गौर करें, मैंने अपना जहन खुद डेवलप करना है, मुझे पता होना चाहिए कि क्या बात अच्छी है, मुझे उसे अपनाना है। देखिए ना, आपने बच्चे को कहा कि भई आपस में मत लड़ो, बच्चों से कहा आपस में मत लड़ो, अगर बच्चे मानेंगे तो नहीं लड़ेंगे ना, लेकिन उन्होंने सुना, उन्होंने सिर्फ सुना, थोड़ी देर खामोशी रही, थोड़ी देर बाद फिर छीना झपटी शुरू हो गई, क्या करेंगे? अब आप कहेंगे मैंने तो तरबियत कर दी। नहीं, तरबियत नहीं की आपने, मैक्सिमम क्या करना है, बच्चे के अंदर ये बात पैदा करें कि वो बात को एक्सेप्ट करना सीखे, बात को अपनाना सीखे, बात को अपनाकर उस सांचे फिक्र में खुद को ढालना सीखे। अब बताइए, ये तरबियत तो हुई नहीं कहीं किसी की भी। अब आप गौर करें कि अगर ये तरबियत ही नहीं हुई कि आप किसी की कही हुई बात को एक्सेप्ट करके अपना के उसको अपने ऊपर तारी कर ले, तरबियत तो नहीं हुई, ये तो जर्नल हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा ये जहन अपना लेता है, कौन सा एक्सेप्टेंस का, पर अपना कर उसको अमल पैरा होने का, हाँ कितना ही जोर लगे, कितना ही जोर लगे, वो उस बात को अपना ले जो उसके बाप ने उसे कही थी, तो बाप को अजर मिला या नहीं मिला? अब फर्ज करें कि मैं फौत हो गया, अब मैं अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सका, लेकिन मेरा एक बेटा बहुत ही शानदार बच्चा बन गया, दुनिया पे दुनिया उस पर फख्र कर रही है, तो बाप होने के नाते मेरा क्या जरूर होगा ऊपर, होगा या नहीं? गेम समझ आ गई?
आ रही है सर।
देखिए ना, सीधी सी बात है कि बच्चे ने अगर खुद को डेवलप कर लिया तो उसका उसकी वजह से कईयों का भला होगा। सबसे पहले तो उसका अपना भला होगा, फिर आगे उसकी औलाद का भला होगा, और फिर इसका अजर और सवाब उसके पेरेंट्स को भी जाएगा। वाजे हो गई बात?
जी वाजे हो गई सर। सर ये जो बात आप पहुंचा रहे हो, मतलब जब आप उनसे कहते कि ये काम मत करो, उन पर है कि वो उसको अपनाए
ना? ये ठीक है, अब हमें चालाक होना पड़ेगा, हमें उनसे बात मनवाने का हुनर सीखना पड़ेगा कि हम अपनी बात उनके जहन में किस सलीके से अंदर उतार दें। अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मैंने तरबियत तो कर दी अपनी तरफ से। मैंने कल या किसी वक्त एक बात अर्ज की थी कि रबूबियत इंसान के अंदर तरबियत का शोबा है। अल्लाह की सिफत रबूबियत एक तरफ उसको वसाइल फराहम करती है, तो माँ बाप क्या करते हैं? वो भी तो बच्चे को वसाइल फराहम कर रहे हैं। लेकिन असल चीज गौर करें, ये लफ्ज तरबियत में भी रब छुपा हुआ है, यानी ये सिफत रबूबियत का इस्तेमाल है। अगर आपने नहीं किया तो जाहिर है कि रिजल्ट तो उतने आएंगे ना। अभी आपने छाबड़ी लगाई है, आपके पास फर्ज करें कि 1000 संतरे पड़े हैं, 1000 माल्टे हैं, आपने शाम तक सिर्फ 10 बेचे, तो आपकी कमाई क्या हुई? वो 10 के बराबर होगी। और अगर आप 1000 के 1000 बेच लें तो आप कितने खुश होंगे? इसी तरह इंसान के अंदर 11,500 सलाहियतें हैं। आपने कितनी इस्तेमाल की, कितनी बेची? एक भी नहीं, तो दुकानदारी क्या हुई? ठप हो गई।
नहीं
नहीं, तो आप अपनी किसी भी एक, देखे ना, बारी बारी होगा, जहन को बड़ा करते जाएंगे तो अल्लाह खुद ही कर्म करेगा। देखे मैंने अक्सर ये जुमला कहता हूँ, समझना आपने है, समझाना अल्लाह ने है। आप समझने वाले बने तो सही। अब हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई, सारी चीजें उस तरह होनी चाहिए जिस तरह मैं चाहता हूँ। बताइए क्या हुआ? आप समझना तो चाह ही नहीं गए, आप तो अपनी समझ को मुझ पे नाफिज करना चाहते हैं, अल्लाह पे नाफिज करना चाहते हैं। अल्लाह ने यूं क्यों नहीं हुआ, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया तुमने? नहीं, अल्लाह ने तो यूं नहीं, यूं करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था भाई? अल्लाह के कवानीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ने कह रहे हैं तो तुम्हें जो सलाहियतें दी थी वो कहाँ गई? आप कहते हैं जी वो तो मैंने जेब में छुपा के रखी हुई है, तो क्या कर रहे हैं? अल्लाह की नियमतों का कुफरान कर रहे हैं? यही तो कहा अल्लाह ने, मा तश्करूना इल्ला कलीलन, तुम इस्तेमाल ही नहीं करते मेरी दी हुई सलाहियतों का, बहुत ही कम करते। जी ये जो आपकी बात में एक जुमला और ऐड कर दूं मैं, देखिए सारा खेल सिचुएशन की हैंडलिंग है। अगर आप हर लम्हा एक सिचुएशन मान लें और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या होता है हर सिचुएशन के बाद, इधर यू फील लाइक पैटिंग योरसेल्फ और यू फील लाइक किकिंग योरसेल्फ, यानी या तो आपको गुस्सा आ रहा होता है कि मुझसे हैंडल नहीं हुई, या आप खुश हो रहे होते हैं कि यार कैसी हैंडलिंग की है मैंने। अगर सिर्फ आप इस एक जुमले को पकड़ के हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन के चक्कर में पड़ गए तो जेन भी ग्रो करता रहेगा, सलाहियतें भी इस्तेमाल होती रहेंगी, झगड़े फसाद सब का मुक्कू ठपा जाएगा, बशर्ते कि आप सिचुएशन को हैंडल करें। और उसमें एक जुमला मैं अक्सर कहता होता हूँ कि रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें। ठीक हो गया जी?
जी सो मच सर, बहुत बहुत ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।
वाह जी वाह, ठीक हो गया तो थाक भी हो गया। चलिए खुश रहिए जी। और कोई सवाल जी?
जी
जी वालेकुम सलाम।
सर इसमें अभी इजाजे किसने इतनी बड़ी निकाल है पार्किंग रेट है और अपनी मर्जी और अपने पैसे इससे पहले किसी सिलसिले में पार्किंग की ज्यादा इसमें रेट नहीं हुई होगी।
जी जी।
और सिलसिला जिन्हें का ये जिसने एकेडमी बनाकर मर्द और पार्किंग दोनों को एक साथ पुराने पहले की सहूलत मुहैया कर दी।
बेशक।
तो सर क्या ये पार्किंग का होने वाला दौर है ये
इसकी
एक तरह से तैयारी है। इतनी बड़ी
आपने वही जुमला कह दिया जो मैं कहने वाला था आपके सवाल के जवाब में कि भाई अगला दौर खवातीन का आ रहा है लिहाजा उनकी ग्रूमिंग का अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम किया गया। अब गौर करें कि इस ग्रुप में यानी कि डिस्कशन ग्रुप में खवातीन ज्यादा है मर्द है ही नहीं ऑलमोस्ट न होने के बराबर है। वो जो दो तीन है उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो ज्वाइन कर सके और करें। तो अब तलब किसने आई खवातीन ने सीखा किसने खवातीन ने इसलिए क्योंकि आगे उन्होंने घर चलाना है इसलिए उन्हें समझ आ गई कि भाई मेरी सलाहियतों को मैंने इस्तेमाल करना है। हमें वो डिपेंडेंसी का दौर ओवर होता चला जा रहा है जी जी। मैं अपनी बात तो पूरी कर दी मैंने आप मजीद कुछ पूछना चाहें
कश्मीर में अहमियत से क्या मुराद है और ये कश्मीर अहमियत किस नाम और अहमियत का असल शर्त क्या है
आदम का असल शर्त क्या है आदम का असल शर्त है खलीफा अब्दुल्ला होना अल्लाह का नायब होना ये आदम का शर्त है। हम नीचे गिरे तो इंसानियत के दर्जे पे आ गए इंसान का लघवी मतलब है भूला हुआ निसिया हल्का निसिया से है ये लफ्ज इंसान निसी से यानी जब हम ये भूल गए कि अल्लाह ने हमें क्या बनाया था और हम क्या बन गए तो ये इंसानियत का दर्जा लेकिन जब हम इससे भी नीचे गिरे असल साफिलीन में तो क्या हुआ हम आदमी बन गए जानवर बन गए हैवानी सतह पे आ गए। अब हम खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं सारे वो अमाल और अफाल कर रहे हैं जो जानवर करते हैं जानवर भी करते हैं यूं कह ठीक है गिन के देख लेना वो खाते हैं हम भी खाते हैं वो पीते हैं हम भी पीते हैं वो लड़ते हैं हम भी लड़ते हैं वो मतलब है कि बच्चे पैदा करते हैं हम भी करते हैं गौर करें ये सारा हैवानी सतह के अमाल और अफाल है। जब हमारा ज़हन इस काबिल हो जाता है कि हम वो काम करने लगे जो जानवर नहीं कर सकते अब गौर करें जानवर क्या नहीं कर सकते जानवर गौर और फिक्र नहीं कर सकते जानवर ईजाद नहीं कर सकते जानवर किसी चीज की इख्तरा नहीं कर सकते आपने इंसान ने हैवानी सतह से उभर के जब फिक्र इंसानी को इस्तेमाल किया तो क्या किया आपने लिए घल बनाया खुरपा बनाया पहिया बनाया आग जलाई कोई और जानवर करता ही काम फिर कपड़े बुने कपड़े अपना सतरपोशी की ये सारे काम इंसानी दर्जे के हैं। फिर इससे ऊपर का दर्जा जो असल में शर्त है आपका वो है कि आप अल्लाह के नायब बन जाते हैं। अब वो काम करते हैं जो इंसान भी नहीं करता इंसान क्या नहीं कर सकता वो वसाई के बगैर काम नहीं कर सकता गौर करें भाई आप तलवार बनाते हैं तो अल्लाह की वो जो अता है जिसे हदीद कहते हैं लोहा कहते हैं उस लोहे से बरतेंगे तो तलवार बनेगी ना मतलब है आप कोई भी चीज बनाते हैं कुर्सी बनाते हैं मेज बनाते हैं तो वसाइल चाहिए इसके लिए ये रिसोर्सेज के बगैर कोई चीज नहीं बनती लेकिन रूह आजम के दर्जे पे क्या करते हैं जैसे अल्लाह बगैर वसाइल के सारी चीजें कर रहा है अल्लाह وسائل کو تخلیق کر رہا ہے. ہوا کون تخلیق کر رہا ہے؟ دیکھو نا چار بنیادی وسائل ہیں، ہوا، پانی، روشنی اور مٹی. باقی پھر انہیں کی ملٹی پلیکیشن ہیں، باقی ساری کرش جو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں. تو جب انسان یہ بات کلیئرلی سمجھ جاتا ہے کہ میں حیوانی سطح پہ ہوں یا میں انسانی سطح پہ ہوں یا میں روح اعظم کی سطح پہ پہنچ گیا، اسی بات کو حضور قلندر بابا علیہ نے روح انسانی، روح حیوانی، روح اعظم کا نام دیا. اور اسی کو کہا ہے کہ یہ پہلا درجہ علم کا ہے. روح اعظم اصل میں علم کا درجہ ہے، روح انسانی فکر کا درجہ ہے. جب ہم فکر سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کوئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جانور نہیں کر سکتا، تو ہم انسانی سطح پہ آ جاتے ہیں فکر. پھر عمل جو ہے یہ حیوانی سطح پہ ہوتا ہے. بات ہو گئی؟ بات ارشاد.
اس سیشن میں آپ سے کسی نے سوال کیا، ہم نے وقت ضائع کر دیا، سب کا صبح صبح وقت کیسے ضائع کرے، وقت کرنا ہے سر، وقت کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں. تو سر آج کا دور اتنا مشکل دور ہے، ہر شخص یہ لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، یا میں وقت نہیں، مجھے وقت نہیں ملتا. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم
بالکل یہی، بالکل یہی، میں بالکل یہی. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، یہ حدیث ہے لا تبسط دہر، زمانے کو برا مت کہو، فإن اللہ دہر، کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے. غور کریں، اب اگر کسی بندے کے پاس خود کو ڈیولپ کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ برائی کر رہا ہے نا. کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ.
اپنے ساتھ
اگر کوئی بندہ اتنا جاہل ہے کہ اسے اپنے برے اور بھلے کا پتہ نہیں ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا؟
نہیں،
ہو ہی نہیں سکتا. بھئی جو بندہ اپنا برا بھلا نہیں جانتا، دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں اگر ڈیویلپ کروں گا، گرو کروں گا، تو میں خود کو ایوالو کروں گا، تو میں کس کا بھلا کروں گا؟ یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اور ہم سب اپنی اپنی ایوالومنٹ، اپنی ڈیویلپمنٹ، اپنی گروتھ، اپنی بلومنگ کی طرف چل پڑے، کس کا بھلا کریں گے؟ ہم اپنا بھی بھلا کریں گے، اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے فیلو بینگز کا، اپنی معاشرے کا بھی بھلا ہوتا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انہوں نے افراد کی کریکشن سجیسٹ کی، افراد نے اسے اپنایا، اور وہ ایک بیوقامت انسان بنتے چلے گئے. نتیجہ پورا معاشرہ سیدھا ہوتا چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ وہی کی طرزوں سے دور ہو گئے، غور و فکر بند ہو گیا، دوسروں نے چالاکی سے آپ کو جاہل کر دیا، آپ اپنی جہالت میں خوش ہو گئے. نتیجہ آج جو حشر ہے ہمارا، وہ آپ کے سامنے. I'm so grateful جی. میرا خیال ہے کافی ہے، یا ہے کوئی اور سوال؟ چلیے، بہت شکریہ جی. اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. جو باتیں اللہ نے آپ کی سماعت تک پہنچائیں، اس کا اگر آپ نے اس پہ تفکر کر کے اس کو اپنانے کی طرف جٹ گئے، تو انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کرے گا. چلیے، خوش رہیے. اللہ حافظ.
اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.